सराय नाहर राय, अक्षांश 25 डिग्री 18 इंच उत्तर, देशांतर 81 डिग्री 50 इंच पूर्व, नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल प्रतापगढ़ के जनपद मुख्यालय से 25 किमी दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सूखी हुई एक गोखुर झील के किनारे पर पृष्ठ संख्या 305 स्थित है। यद्यपि झील लगभग पूरी हो गई है, तथापि इसकी रूपरेखा स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। इस पुरास्थल की खोज सन 1969 में उत्तर प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक स्वर्गीय केसी ओझा ने किया था। सन 1970 में उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण के पीसी दत्त के सहयोग से एक मानव कंकाल का उत्खनन कराया था। तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय सहयोग से सन 1971 से 72 तथा 1972 से 73 में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर सराय नाहर राय का रेखाचित्र 19 सराय नाहर राय उत्खनित पुरास्थल का रेखाचित्र जी आर शर्मा 1973 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 306 उत्खनन कराया था। स्वर्गीय जी आर शर्मा के निर्देशन में आर के वर्मा, वी डी मिश्र आदि ने उत्खनन कार्य का संचालन किया था। सराय नाहर राय का पुरास्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस प्रवासक क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। पानी के बहाव के परिणाम स्वरूप ऊपरी सतह के कट जाने के कारण मानव कंकाल भी झांकते हुए मिले हैं। सराय नाहर राय में कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्द चूल्हों फायर पीट्स का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। एक समाधि का उत्खनन उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने कराया था। इनके अलावा पुरास्थल पर अन्वेषण के फलस्वरूप 4 अन्य मानव समाधियों और 3 गर्त चूल्हों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जिनका उत्खनन नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व संगठन ने सराय नाहर राय के पुरास्थल को कंटीली तार की बाड़ से घेर कर सुरक्षित कर दिया है। चित्र 20 सराय नाहर राय मानव समाधियों का विहंगम दृश्य जी आर शर्मा 1973 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 307। चित्र 21 सराय नाहर राय संयुक्त रूप से समाधिस्थ 4 मानव कंकाल जी आर शर्मा 1973 के सौजन्य से सराय नाहर राय की कब्रें समाधियां आवासक क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। सिरहाने के रूप में 3 से 4 सेमी मोटी मिट्टी की परत देकर मृतकों को पश्चिम पूर्व दिशा में चित्त लिटाकर विस्तीर्ण रूप से दफनाया गया था। प्रायः सभी कंकालों का एक हाथ और शरीर समानांतर था और पुरुषों का दाहिना हाथ था, स्त्रियों का बायां हाथ। जिन कंकालों के विषय में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध थे पेट पर रखा हुआ मिला था। उत्खनित 12 समाधियों में से 11 में एक एक मानव कंकाल मिले थे। एक समाधि ऐसी थी जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के शव को कब्र में रखने के बाद पुनः पुरुष के ऊपर एक अन्य पुरुष तथा स्त्री के ऊपर दूसरी स्त्री का शव रखकर दफनाए गए थे। कब्रों को खोदते समय निकली मिट्टी तथा चूल्हों की मिट्टी एवं राख आदि से इन्हें भरा गया था। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में केवल लघु पाषाण उपकरण मिले थे। कंकालों के साथ जो बड़े बड़े कंकड़ मिले थे उन्हें प्रारंभ में ब्रह्मवश घोंघा शेल समझ लिया गया था। भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण के पीसी दत्त ने अपने निबंधों में हस्तनिर्मित कुंडलित मृदभांड के रूप में इनका उल्लेख किया है। यह बिल्कुल गलत है। वस्तुतः मध्यपाषाण घाटी में स्थित मध्यपाषाण काल के किसी भी उत्खनित पुरास्थल से मृद्भांड के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। पृष्ठ संख्या 208 सराय नाहर राय से प्राप्त कुल 15 मानव कंकालों में से 11 कंकालों के लिंग की पहचान की जा चुकी है। 7 कंकाल पुरुषों के तथा 4 स्त्रियों के हैं। 4 कंकालों के लिंग की पहचान करना संभव नहीं है। यहाँ से जो मानव कंकाल मिले हैं वे हृष्ट पृष्ठ तथा सुगठित शरीर वाले मानव समुदाय के प्रतीत होते हैं। हाथ पैर की हड्डियों के अतिरिक्त कपाल स्कल की संधि रेखाओं के विलयन तथा स्थायी दांतों आदि के आधार पर कंकालों की आयु मृत्यु के समय 16 वर्ष से 34 वर्ष के बीच आकी गई है और औसत आयु 17 से 31 वर्ष निर्धारित की गई है। स्त्रियों की मृत्यु 15 से 35 वर्ष की आयु में हुई है। स्त्रियों की आयु का औसत 16 से 32.5 वर्ष के बीच आता है। सराय नाहर राय के पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही अपेक्षाकृत लंबे कद के थे। पुरुषों की औसत लंबाई 173.93 सेमी से 192.08 सेमी थी। स्त्रियों की लंबाई का औसत 174.89 सेमी से 189.68 सेमी था। रेखाचित्र 22 सराय नाहर राय स्तंभ गर्त युक्त झोपड़ी जी आर शर्मा 1973 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 309 सराय नाहर राय में 8 गर्त चूलों का उत्खनन किया गया है। ये गोलाकार अंडाकार तथा अनियमित आकार के हैं। गर्त चूलों का मुंह चौड़ा तथा पेंदी सक्रिय है जिनके ऊपर की माप 1.49 सेमी से 72 सेमी है तथा पेंदी 1.02 सेमी से 45 सेमी है। उनकी गहराई 10 सेमी से 25 सेमी के बीच में है। गर्त चूल्हों से हिरण बारहसिंघा जंगली सुअर आदि पशुओं की अर्जली हड्डियां मिली है। इनके अतिरिक्त कछुआ की खोपड़ी के टुकड़े तथा हाथी के एक पसली भी प्राप्त हुए हैं। चूल्हों का उपयोग संभवतः पशुओं के मांस को भूनने के लिए किया जाता था। इन चूल्हों का उपयोग संभवतः पशुओं के मांस को भूनने के लिए किया जाता था। इन चूल्हों में केवल राख मिली है, कोयले के टुकड़े नहीं मिले हैं। यह अनुमान किया गया है कि घास फूस तथा पत्तियों एवं टहनियों आदि का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। सराय नाहर राय के आवासक क्षेत्र में 5x4 मीटर आकार का एक फर्श मिला है जिससे चारों कोनों पर एक एक स्तंभ गर्त मिले हैं। जी आर शर्मा ने इसको सामुदायिक चूल्हा कम्युनिटी हर्थ कहा है, लेकिन इसके एक झोपड़ी का फर्श होने की अधिक संभावना है क्योंकि इसके फर्श से लघु पाषाण उपकरण पशुओं की हड्डियां तथा छोटे छोटे कई चूल्हे मिले हैं। सराय नाहर राय से लघु पाषाण उपकरण अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिले हैं। प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों में समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड बेधक चांद्रिक खुरचुनी समबाहु तथा विषम बाहु त्रिभुज आदि ज्यामितीय उपकरण हैं जो चर्च चालसेरनी अगेट जैस्पर आदि पर बने हुए हैं। पशुओं की हड्डियों तथा श्रृंगों पर बने हुए उपकरण इस पुरास्थल से अत्यल्प संख्या में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय पुरातात्विक दृष्टि से मध्य पाषाण काल के परवर्ती चरण से संबंधित किया जा सकता है क्योंकि यहाँ से ज्यामितीय उपकरण मिले हैं। सराय नाहर राय से 2 रेडियो कार्बन तिथियां प्रतिवेदित है। प्रथम तिथि TF 1104 10345 प्लस माइनस 110 इक्वल टू 8395 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व। एक बिना जली हुई मानव अस्थि पर आधारित है। दूसरी तिथि TF 1356 एवं 1359 2940 प्लस माइनस 125 इज इक्वल टू 990 प्लस माइनस 125 ईसा पूर्व है, जो जली हुई हड्डियों के नमूनों के विश्लेषण से निकाली गई है। इन दोनों में परस्पर संगति नहीं है, इसलिए दोनों ही तिथियां अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। महदहा अक्षांश 25 डिग्री 59 इंच 2 फुट। उत्तर देशांतर 25 डिग्री 30 फुट पूर्व। नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल प्रतापगढ़ कस्बे से पूर्वोत्तर दिशा में 31 किमी और पट्टी कस्बे से 5 किमी उत्तर प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के महदहा गांव के पूर्व दिशा में लगभग 1 किमी की दूरी पर स्थित है। सन 1978 में शारदा सहायक नहर परियोजना की जौनपुर नहर की शाखा को चौड़ी करने की प्रक्रिया में इस पुरास्थल की जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को अपने भूतपूर्व छात्रों और पट्टी तहसील के तत्कालीन परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से प्राप्त हुई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सन 1953 में जब जौनपुर नहर की शाखा की खुदाई हुई, उस समय इस पुरास्थल का काफी पृष्ठ संख्या 210 बड़ा भाग नष्ट हो गया था। सूचना मिलने पर सन 1978 एवं 1979 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने बचाव उत्खनन के रूप में यहां पर कार्य किया, जिसका संचालन वीडी मिश्र एवं जेएन पाल ने किया। रेखाचित्र 23 महदहा पुरास्थल की रूपरेखा जीआर शर्मा 1980 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 311। लगभग 8000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ महदहा का पुरास्थल एक गोखुर झील के पश्चिमी सीमांत पर स्थित है। पुरानी नहर के पश्चिम में आवासक क्षेत्र स्थित है, जिसमें मानव समाधियां मिली हैं। इस नहर की पूर्व दिशा में वन्य पशुओं की अर्दली एवं खंडित हड्डियां, सींग, श्रृंग तथा दांत इत्यादि मिले हैं, जिसकी वजह से इसको बदस्थल अथवा भूचड़खाना कहा गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जंगली पशुओं के शिकार करने वाले आवासक क्षेत्र के समीप पशुओं को प्रायः नहीं काटते हैं। अधिक संभावना इस बात की है कि यह उच्छिष्ट हड्डियों की छेपड़ भूमि डंपिंग ग्राउंड है। महदहा के आवासक क्षेत्र के उत्खनन के फलस्वरूप 60 सेमी मोटा सांस्कृतिक जमाव प्रकाश में आया है, जिसे विभिन्न स्तरों की संरचना तथा रंग आदि के आधार पर 4 उपकालों में विभाजित किया गया है। महदहा के आवासक क्षेत्र में कुल मिलाकर 28 समाधियों और 25 गर्त चूल्हों का उत्खनन किया गया है, जिसके 10 स्तरों में से 9वें एवं 8वें स्तर मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। महदहा के मध्य पाषाणिक मानव जानवरों के मांस को खाने के बाद उच्छिष्ट हड्डियों आदि को झील में फेंक दिया करते थे। जलमग्न रहने के कारण काफी हड्डियां सुरक्षित रूप में बच गई हैं, जो उत्खनन के फलस्वरूप प्रकाश में आई हैं। झील के 9वें-8वें स्तरों से एकत्र किए गए नमूने पूरा पुष्प पराग से युक्त हैं, जिनका प्राथमिक विश्लेषण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के डीडी पंत ने किया है। इस विश्लेषण से घास के पूरा पुष्प परागों के अस्तित्व का पता चला है। सन 1953 में नहर की खुदाई से निकली हुई मिट्टी को नहर की पटरी में डाल दिया गया था। सन 1979 में नहर की पटरी में पड़े हुए मलबे से प्राप्त हाथ पैर की मानव अस्थियों का नए सिरे से पुरातात्विक दृष्टि से अध्ययन करने पर 17 अथवा 21 अन्य मानव कंकालों के अस्तित्व का संकेत मिला है। इससे यह स्पष्ट है कि महदहा के उत्खनन से जितने पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, लगभग उससे अधिक ही पुरानिधियां नष्ट हो गई होंगी। सराय नहर की भांति महदहा से भी समाधियां प्रायः छिछली एवं अंडाकार बनाई जाती थी। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके मृतक को कब्र में रखने की प्रथा थी। यद्यपि इसके अपवाद भी मिले हैं, जिनमें दिक स्थापन पूर्व पश्चिम मिला है। महदहा में विस्तीर्ण समाधान की अधिक संख्या में मिले हैं। महदहा के 28 समाधियों में से 26 में एक एक मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ से युग्मित समाधियों के दो उदाहरण ज्ञात हैं, जिनमें से प्रत्येक समाधि में एक स्त्री तथा एक पुरुष साथ साथ दफनाए हुए मिले हैं। सराय नहर राय के कंकालों की तरह महदहा में हाथों को रखने की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी। सामान्यतः हाथ कंकाल के धड़ के समानांतर रखे हुए मिले हैं। कभी कभी एक हाथ शरीर के समानांतर तथा दूसरा पेट पर अथवा जांघ पर रखा हुआ मिला है। एक नर कंकाल के दोनों पैर ऊपर पृष्ठ संख्या 312 की तरफ मुड़े हुए थे तथा बाएं हाथ को कमर के नीचे तथा दाहिने हाथ को दोनों जांघों के बीच में रखा गया था। पृष्ठ संख्या चित्र 24 महदहा समाधिस्थ मानव कंकाल जी आर शर्मा 1980 के सौजन्य से। महदहा के उत्खनन के फलस्वरूप जिन 28 समाधियों की जानकारी प्राप्त हुई उनको 4 उपकालों में विभाजित किया गया है। महदहा के प्रथम उपकाल से 3 मानव समाधियां मिली हैं, जिनमें 4 कंकाल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि प्रथम समाधि एक युग्म समाधि है। इस युग्मित समाधि से 2 कंकाल मिले हैं, जिसमें पुरुष को पृष्ठ संख्या 313 दाहिने ओर तथा स्त्री को बाईं ओर लिटाकर दफनाया गया था। सभी कंकाल पश्चिम की ओर सिर करके दफनाए गए थे। अन्य 2 समाधियों से एक एक कंकाल मिले हैं। इस उपकाल के 4 में से 2 पुरुष कंकाल और 2 स्त्री कंकाल थे। सभी कंकाल वयस्क लोगों के थे। चित्र 25 महदहा कुंडल पहने हुए मानव कंकाल जी आर शर्मा 1980 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 314 दूसरे उपकाल से 2 समाधियां मिली हैं, जिनमें से एक समाधि में पुरुष का एक कंकाल तथा दूसरी युग्म समाधि में एक स्त्री तथा एक पुरुष के कंकाल मिले हैं। युग्म समाधि में पुरुष के कंकाल के ठीक ऊपर स्त्री का कंकाल दफनाया हुआ मिला है। KUR केनेडी दोनों कंकालों को पुरुषों का बतलाते हैं। सभी कंकाल पश्चिम पूर्व की ओर लिटाकर दफनाए गए हैं। द्वितीय उपकाल की दोनों समाधियों में अंत्येष्टि सामग्री रखी हुई मिली है। एकाकी पुरुष कंकाल हिरण के श्रृंगों की बनी 5 मुद्रिकाओं की एक माला गले में पहने हुए था। युग्म समाधि का पुरुष श्रृंगों की बनी हुई 12 मुद्रिकाओं की एक माला गले में पहने हुए था तथा बाएं कान में श्रृंग का बना हुआ एक गोल कुंडल धारण किए हुए था। महदहा के तीसरे उपकाल से 10 समाधियां मिली हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक एक मानव कंकाल मिला है। इसमें से 6 कंकालों के लिंग की पहचान करना संभव है। 4 स्त्रियां और 2 पुरुष हैं। 4 कंकालों के लिंग की पहचान नहीं की जा सकी है। 7 कंकाल पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाए हुए मिले हैं, जिनके सिर पश्चिम की ओर थे। 2 में भिन्नता थी। एक कंकाल पूर्व पश्चिम तथा दूसरा पूर्व पूर्व दक्षिण से पश्चिम पश्चिम उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया था। 2 समाधियों से अंत्येष्टि सामग्री मिली है। एक महिला कंकाल के साथ सिंह की बनी हुई 2 गुड़ियां तथा सिंह का एक बाड़ मिला है तथा दूसरी महिला के साथ कछुआ की खोपड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ मिला है। महदहा के चौथे उपकाल से सबसे अधिक 13 समाधियां मिली हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक एक मानव कंकाल दफनाया हुआ मिला है। एक मुड़े हुए कंकाल को छोड़कर से सभी 12 विस्तीर्ण समाधान हैं। 13 कंकालों में से 11 के लिंग की पहचान की जा सकी है, जिनमें से 7 महिलाएं 4 पुरुष हैं। 2 कंकालों की पहचान नहीं की जा सकी है। 13 में से 10 कंकाल वयस्क लोगों के थे। एक वयोवृद्ध व्यक्ति का तथा 2 बच्चों के कंकाल थे। 13 में से 6 का सिर पश्चिम की ओर तथा 5 का सिर पूर्व दिशा की ओर करके दफनाया गया था। 2 कंकालों का दिक्स्थापन किसी सीधी दिशा में नहीं था बल्कि थोड़ा तिरछा था। दो महिलाओं तथा एक पुरुष के साथ अंत्येष्टि सामग्री रखी हुई मिली है। महदहा के 30 कंकालों में से 17 पुरुष तथा 7 स्त्रियां और 6 के लिंग की पहचान नहीं हो सकी है। मृत्यु के समय पुरुषों की आयु 18 से 40 वर्ष, स्त्रियों की 30 से 64 वर्ष आयु थी। महदहा के लगभग सभी कंकाल नहर के चौड़ा करने के फलस्वरूप कट गए थे, इसलिए उनकी वास्तविक लंबाई की नाप करना संभव नहीं है। तथापि अनुमान है कि स्त्री पुरुष लंबे कद के हृष्ट पुष्ट थे। अधिकांश लोग स्वस्थ थे। महदहा के उत्खनन से 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। कतिपय गर्त चूल्हों के भीतरी भाग को लीप पोत पर कर चिकना बनाया गया था। गर्त चूल्हों से राख, जली हुई मिट्टी तथा पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। महदहा के एक गर्त चूल्हे में पृष्ठ संख्या 315 भैंसे का सिंह युक्त पूरा सिर मिला है। मांस को भूनकर खाने के विषय में ये अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। महदहा के गर्त चूल्हों का गोखुर झील से वन्य पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सांभर, चीतल, बारहसिंघा, जंगली सुअर, गैंडा, हाथी आदि पशुओं का शिकार ये लोग करते थे। कछुआ, मछली आदि जलचरों का भी शिकार किया जाता था। पक्षियों के पकड़ने के भी संकेत मिलते हैं। चित्र 26, महदहा, अस्थि उपकरण, जीआर शर्मा, 1980 के सौजन्य से। महदहा से लघु पाषाण उपकरण अपेक्षाकृत कम संख्या में मिले हैं। प्रमुख उपकरणों में से ब्लेड, खुचनी, बेधक, चांद्रिक, त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज उल्लेखनीय है। महदहा से सिंह तथा श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सराय नहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। सिंह तथा श्रृंग के उपकरणों में बाड़ाग्र, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि है। श्रृंग के आभूषणों में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय है। महदहा के बलुअर पत्थर पर बने हुए टूटे हुए सिल एवं लोढ़े, गोफन, पासार तथा हथौड़े आदि भी मिले हैं। सिल लोढ़ों की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीस कर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा पुष्प पराग के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में संकेत मिलता है। पृष्ठ संख्या 316, चित्र 27, महदहा, अस्थि आभूषण एवं अस्थियां, जीआर शर्मा, 1980 के सौजन्य से। महदहा का तिथिक्रम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्यामितीय चरण में रखा जा सकता है। जली हुई हड्डियों के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ने 3 रेडियो कार्बन तिथियां निकाली हैं। ये तिथियां असंशोधित तथा अद्यपूर्व बिफोर प्रेजेंट में हैं। ये तिथियां प्रथम 4010 प्लस माइनस 120, दो 2880 प्लस माइनस 250 तथा तीन 4840 प्लस माइनस 130 है। दमदमा अक्षांश 26 डिग्री 10 इंच उत्तर, देशांतर 82 डिग्री 10 इंच 36 फुट पूर्व का मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल के उत्खनित पुरास्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक सुरक्षित पुरास्थल है और इसका उत्खनन अपेक्षाकृत विस्तार से। पृष्ठ संख्या 317, रेखाचित्र 28, दमदमा पुरास्थल की रूपरेखा आर के वर्मा एवं अन्य 1985 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 318 किया गया है। महदहा से लगभग 5 किमी उत्तर पश्चिम में प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के बारी कला नामक गांव के पास दमदमा का मध्य पाषाणिक पुरास्थल स्थित है। सई नदी की एक सहायक सरिता पीली नदी में मिलने वाले तंबूरा नाले की दो धाराओं के संगम पर स्थित दमदमा का पुरास्थल मध्य पाषाणिक सामग्री को अपने आंचल में समेटे हुए लगभग 8,750 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पुरास्थल की खोज सन 1978 में हुई थी। पूर्ण रूप से सुरक्षित पुरास्थल होने के कारण इसको एक सुनियोजित योजना के अनुसार उत्खनन के लिए चुना गया, जिससे मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल के लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में सम्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। सन 1982 से 83 से 1986 से 87 तक दमदमा के उत्खनन का संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर के वर्मा, वी डी मिश्र, जे एन पांडे तथा जे एन पाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 5 वर्ष तक लगातार हुए उत्खनन के फलस्वरूप मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल की संस्कृति पर नवीन प्रकाश पड़ा है। उत्खनन के लिए पूर्वी, मध्यवर्ती एवं पश्चिमी इन तीन क्षेत्रों में दमदमा को विभाजित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों से मध्य पाषाणिक पुरावशेष समान रूप से मिले हैं, किंतु मानव समाधान अभी तक पूर्वी क्षेत्र से नहीं मिले हैं। मानव समाधान मध्यवर्ती क्षेत्रों से ही प्रकाश में आए हैं। उत्खनन से उपलब्ध प्रमाणों से दमदमा का 1.50 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्रकाश में आया है, जिसे 10 स्तरों से विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी स्तर को छोड़कर से सभी 9 स्तर मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऊपरी स्तर से विविध प्रकार के पुरावशेष आपस में मिले हुए प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के संपूर्ण सांस्कृतिक जमाव को 9 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उपकाल से मध्य पाषाण काल के लोगों के रहने के उल्लेखनीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में मिट्टी के कई परत वाले लेप से युक्त तथा बिना लेप वाले गर्त चूल्हों, जली हुई मिट्टी के प्लास्टर युक्त फर्श, वन्य पशुओं की हड्डियों, लघु पाषाण उपकरणों, श्रृंग के बने हुए उपकरणों एवं आभूषणों और मानव समाधानों आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। स्तरीकरण और पुरावशेषों की दृष्टि से सभी 9 स्तर अविच्छिन्नता द्योतित करते हैं। इस पुरास्थल पर सर्वप्रथम बसने के लिए आने वाले मध्य पाषाण काल के लोगों ने प्राकृतिक पीली गाद मिट्टी, जलोढ़क मिट्टी के ऊपर अपना आवास बनाया था। उन लोगों ने उस पीली मिट्टी को ही खोदकर मृतकों के लिए समाधान बनाए तथा पशुओं का मांस भूनने के लिए गर्त चूल्हों का निर्माण किया था। पृष्ठ संख्या 319, तालिका 11, दमदमा के मानव समाधान सांस्कृतिक उपकाल। प्रथम उपकाल समाधान संख्या 1, द्वितीय उपकाल समाधान संख्या 1, तृतीय उपकाल समाधान संख्या 3, चतुर्थ उपकाल 1 समाधान, पंच उपकाल 2 समाधान, षष्ठ उपकाल 2 समाधान, सप्तम उपकाल 3 समाधान, अष्टम उपकाल 13 समाधान, नवम उपकाल 15 समाधान। कुल समाधानों की संख्या 41। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं, जो मध्य पाषाणिक समाधान प्रणाली के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्रदान करते हैं। पूर्वी क्षेत्र से अभी तक कोई मानव समाधान नहीं मिला है। स्तरीकरण के प्रमाण के आधार पर इन समाधानों को 9 उपकालों में विभाजित किया गया है। चित्र 29, दमदमा औंधे मुंह समाधिस्थ कंकाल मानव कंकाल, आर के वर्मा एवं अन्य 1985 के सौजन्य से। इन समाधानों में से 5 समाधान समाधान संख्या 6th, 16th, 20th, 25th एवं 36th युग्म समाधान है और एक समाधान संख्या 18th में 3 मानव कंकाल। पृष्ठ संख्या 320। चित्र 30, दमदमा युग्म मानव समाधि आर के वर्मा एवं अन्य 1985 के सौजन्य से एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। 6 समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अधिकांश कंकाल पश्चिम पूर्व दिशा में सिर को पश्चिम दिशा में रख करके दफनाए हुए मिले हैं, लेकिन कतिपय कंकालों के सिर पूर्व अथवा उत्तर या दक्षिण दिशा में रखे हुए मिले हैं। अधिकांश मानव कंकालों के पीठ केवल रेखाचित्र 31 दमदमा त्रिमानव समाधि आर के वर्मा एवं अन्य 1985 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 321 सांगो पांग लिटाकर दफनाया गया था, लेकिन दो मानव कंकालों को पेट के बल और दो को पैर मोड़कर दफनाया गया था। श्रृंग के बने हुए बाड़ तथा आभूषण और पशुओं की हड्डियां अंत्येष्टि सामग्री के रूप में रखी गई थी। अधिकांश कंकाल वयस्क स्त्री पुरुषों के थे, जिनकी आयु का औसत 18 से 40 वर्ष के बीच आका गया था। बच्चों के कंकाल यहाँ से नहीं मिले हैं। दमदमा के उत्खनन से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनमें से ब्लेड, फलक, क्रोड, माइक्रोब्यूरिन के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों में उपयोग के प्रमाण से युक्त ब्लेड, पुनर्गढ़ित ब्लेड, समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, समद्विबाहु तथा विषम बाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ, छिद्रक, चांद्रिक आदि सम्मिलित हैं। इन उपकरणों का निर्माण चालसेडनी, चर्ट, क्वार्ज, अगेट, कार्नेलियन आदि माणिक्य कोटि के प्रस्तरों पर किया गया है। पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त श्रृंग के उपकरण तथा आभूषण भी मिले हैं। इनमें बाढ़ाग्र तथा मुद्रिकाएं प्रमुख हैं। बलुअर पत्थर के सील के टूटे हुए टुकड़े, लोढ़े, हथौड़े, निहाई आदि प्राप्त हुए हैं। दमदमा के उत्खनन से प्रायः सभी स्तरों से वन्य पशुओं की हड्डियां मिली हैं। पशुओं की हड्डियों के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये गैंडा, हाथी और चीतल, सांभर, बारहसिंगा तथा जंगली सुअर आदि वन्य पशुओं की हड्डियां हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि लगभग 90% पशु अस्थियां जली हुई अथवा अध जली हैं, जो यह द्योतित करती है कि मध्य पाषाण काल के लोग पशुओं का मांस भूनकर खाते थे। पशुओं के अतिरिक्त अनेक पक्षियों तथा मछली, कछुआ आदि की हड्डियां भी काफी बड़ी संख्या में मिली हैं। वनस्पतियों के अवशेष, बेर की अधजली गुठलियां भी यहां से प्राप्त हुए हैं, जो उनकी भोज्य सामग्री के विषय में संकेत प्रदान करते हैं। इस प्रकार दमदमा के उत्खनन के फलस्वरूप मध्य गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर सर्वथा नया प्रकाश पड़ा है। विविध प्रकार के मानव समाधानों, लघु पाषाण उपकरणों, पशुओं के श्रृंगों के बने हुए उपकरणों एवं आभूषणों, मिट्टी के प्लास्टर के युक्त आवास के फर्श, गर्त चूल्हों, वन्य पशुओं की अस्थियां तथा मानव वनस्पतियों के अवशेषों आदि के साक्ष्यों की दृष्टि से दमदमा का उत्खनन अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। दमदमा से पूरा पुष्प पराग तथा वानस्पतिक खाद्य पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए नमूने इकट्ठा करके विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों के पास भेजे गए हैं। दमदमा के उत्खनन के दो नमूनों को रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। प्रथम तिथि जो 8640 प्लस माइनस 65 तथा 8365 प्लस माइनस 65 बीपी है। पृष्ठ संख्या 322 भारतीय शिक्षा चित्रकला, भारतीय शिला चित्रकला दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में फ्रांस तथा स्पेन के अंतर्गत अनेक गुफाएं एवं शिलाश्रय स्थित हैं, जिनमें कतिपय गुफाओं की दीवालों तथा भीतरी छतों पर चित्र मिलते हैं। चित्रों में प्रायः उन जंगली पशुओं को चित्रित किया गया है, जिनका आखेट करके पाषाण काल के लोग अपनी क्षुधा शांत करते थे। यूरोप में इन चित्रों को उच्च पुरापाषाण काल के स्तरों से संबंधित किया जाता है। भारत में शिला चित्रकला के विषय में गंभीर अनुसंधान 20वीं शताब्दी के विगत 25-30 वर्षों में हुए हैं। इसके पूर्व जो प्रयास हुए थे वे छिटपुट ढंग से किए गए शौकिया प्रयास मात्र थे। सन 1967-68 में सर्वप्रथम आर्किबाल्ड कार्लाइल ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुहागी घाट में स्थित चित्रित शिलाश्रयों की ओर कलाविदों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद कार्लाइल एवं जे कागबर्न ने मिर्जापुर जिले में स्थित शिलाचित्रों के विषय में खोज कार्य को सन 1880 के से सन 1999 के बीच में प्रकाशित किया। सन 1910 में सी डब्ल्यू एंडरसन ने सिंहनपुर में के शिलाचित्रों का वर्णन प्रस्तुत किया। पचाचन मित्र ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक अपने ग्रंथ में शिलाचित्रों का भी वर्णन किया है। सन 1932 में मनोरंजन घोष ने रॉक पेंटिंग्स एंड अदर एंटिक्विटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड लेटर टाइम्स नामक पुस्तक में शिलाचित्रों का अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया था। डी एच गार्डन, आर के वर्मा, एस के पांडे, वी एस वाकड़कर, यशोधर मटपाल तथा इरविन न्यू मेयर आदि अन्य विद्वानों ने भारतीय शिलाचित्रों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसके फलस्वरूप इस कला के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। भारत में शिलाचित्रकला के कतिपय उदाहरण, यद्यपि उत्तर में जम्मू कश्मीर प्रदेश की कश्मीर घाटी, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय कुमायूं क्षेत्र से तथा दक्षिण में कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, तथापि शिला चित्रकला के सबसे अधिक उदाहरण मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पठारी में स्थित सीए मास्टरों से ही मिली है। मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में अनेक शिलाश्रय हैं, जिनमें कुछ चित्रकारी से युक्त हैं। मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सागर, दमोह, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, रायसेन, मंदसौर आदि जिलों में चित्रकारी से युक्त बहुसंख्यक शिलाश्रय हैं। पंचमढ़ी, मोदी, आदमगढ़, भीमबेटका तथा घघरिया नामक शिलाश्रयों का उत्खनन हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय हैं, जिनका अध्ययन अनेक व्यक्तियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की चकिया तहसील में कर्मनासा के तट पर बाढ़गढ़ एवं गहला शाहपुर मिर्जापुर जिले में शाहबिया बेडिया, लाड बेडिया, बागा, बगही खोर, लरछहवा, खड़ी पहाड़ी, मुनिबाबा, लेखहिया, पंचमुखी, कंडाकोट पृष्ठ संख्या 323, चनमनवा, लेखनिया, लेखनिया, कोहबर, घोड़ा मंगर, मलदरिया, महदरिया, थर पहाड़, इलाहाबाद जिले के दक्षिणी पश्चिम में रमगढ़वा, छतरपलिया, चंदातरी, लखहर तथा चंदवा बादा जिले में सरहट, बरगढ़, अमवा, करियाकुंज आदि चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय हैं। शैलीगत विशेषताओं, तकनीक, अध्यारोपण तथा वर्ण्य विषय आदि के आधार पर विंध्य क्षेत्र की शिला चित्रकला को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला, 2. ताम्रपाषाणिक शिला चित्रकला, 3. ऐतिहासिक शिला चित्रकला। प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला। प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला का संबंध उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस वर्ग की चित्रकला के वर्ण्य विषय उच्च पुरापाषाणिक और मध्य पाषाणिक काल के मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों से बहुत कुछ मेल खाते हैं। प्रागैतिहासिक रेखाचित्र 32 भीम बैठका शिकार करते मानो यशोधर मठ पाल पृष्ठ 1984 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 324। शिला चित्रकला में जंगली पशुओं को प्रायः दौड़ते, उछलते, कूदते, चरते, खड़े अथवा शिकारियों द्वारा पीछा करते, घात लगाकर शिकार करते हुए ज्यादातर दिखलाया गया है। ये पशु एकाकी, एक ही प्रजाति के छोटे अथवा बड़े झुंड में तथा कभी कभी अनेक प्रजातियों के पशुओं के सम्मिलित झुंड के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। आखेट के दृश्यों में जंगली पशुओं, विशेषकर सस्प भोजी पशुओं को भयभीत होकर कभी कभी एक ओर को और यदा कदा अलग अलग दिशाओं में भागते हुए दिखलाया गया है। कतिपय दृश्यों में वर्गाकार जालों, ट्रैप्स में हिरणों को फंसे हुए प्रदर्शित किया गया है। शिकारियों को धनुष बाण तथा कभी कभी भाले लिए हुए दिखलाया गया है। इन दृश्यों के अतिरिक्त फल एवं शहद इकट्ठा करते हुए, चिड़ियों का शिकार करते हुए तथा कछुआ मछली आदि जलचरों को पकड़ते हुए अथवा किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेते हुए मानव समुदाय के अंकन भी मिलते हैं। इस प्रकार इस वर्ग की शिला चित्रकला में आखेट एवं संचय के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोगों के क्रियाकलापों का कुल मिलाकर निरूपण किया गया है। रेखाचित्र 33 नृत्यकर्ता मानव समूह एवं गैंडा का शिकार करते मानव डीपी अग्रवाल 1982 के सौजन्य से पृष्ठ संख्या 325। इन चित्रों को तकनीक के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने कई उपवर्गों में विभाजित किया। ज्यादातर विशेषज्ञ इन्हें 5 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। प्रथम उपवर्ग को अनुकरणात्मक तथा प्राकृतिक इमिटेटिव और नेचुरलिस्टिक कहा गया है। इसमें पशुओं का चित्रण स्वाभाविक एवं यथार्थ ढंग से किया गया है तथा शिकार संबंधी दृश्यों का अभाव है। इस उपवर्ग में मानव का निरूपण अत्यल्प है। चित्र 34 मोरहना पहाड़ बैलगाड़ी अल्विन 1982 के सौजन्य से। दूसरे उपवर्ग को अभिकल्प अथवा संकेतात्मक स्टाइलिस्टिक सजेस्टिव नाम दिया गया है। इस उपवर्ग में वर्ण्य विषय की विविधता उल्लेखनीय है। एकाकी या छोटे से झुंड के रूप में पशुओं का अंकन मिलता है। आखेट के दृश्यों तथा स्त्री पुरुषों का स्वतंत्र अंकन मिलता है। तीसरे वर्ग की संख्या प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रखी गई है। इस उपवर्ग में चित्रों के पृष्ठ संख्या 326 संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। मनुष्यों का अंकन उपर्युक्त कथन का अपवाद है क्योंकि उनके चित्र स्वाभाविक ढंग से बनाए गए हैं। चौथे उपवर्ग में कृत्रिमता का समावेश मिलता है। पशुओं का रूढ़िगत ढंग से अंकन किया गया है तथा ज्यादातर सफेद रंग से चित्रों का निर्माण किया गया है। पांचवें उपवर्ग के चित्रों के बनाने में ज्यामितीय रेखाकृतियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया एवं मधुमक्खी के छत्ते की तरह की डिजाइन हनीकॉम्ब का उपयोग पशु आकृतियों की रूपरेखा को भरने के लिए किया गया है। ताम्रपाषाणिक शिला चित्रकला। ताम्रपाषाणिक शिला चित्रकला की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पालतू पशुओं के अंकन की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। इस कला के चित्रों में ककूदमान बैलों के हम्प्ट ऑक्सन सिंगों में फीते अथवा फूदने टैसल्स बंधे हुए दिखलाए गए हैं। कतिपय दृश्यों में लोगों को बैलों पर सवारी करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार मनुष्यों एवं पशुओं के बीच नजदीकी परिचय परिलक्षित होती है। कलात्मक दृष्टि से प्रथम वर्ग के चित्रों की तुलना में ह्रास दिखलाई पड़ता है। इस वर्ग की कला को ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित किया जाता है। द्वितीय वर्ग की इस चित्रकला को संक्रमणात्मक शिला चित्रकला कहा गया है क्योंकि इसमें पूर्ववर्ती काल को कतिपय विशेषताएं मिलती हैं और कतिपय विशेषताएं नवीन काल से संबंधित हैं। ऐतिहासिक शिला चित्रकला। तृतीय वर्ग की शिला चित्रकला की विषय वस्तु पूर्ववर्ती दोनों वर्गों की चित्रकला से नितांत भिन्न है। इस काल के चित्रकार ने अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश के स्थान पर नवीन वर्ण्य विषयों को शिला चित्रकला के लिए चुना है। इस उपवर्ग में चित्रकला में झूठ डाले हुए हाथियों तथा जीन कसे हुए घोड़ों को अंकित किया गया है। राजकीय जुलूस अथवा शोभा यात्रा का चित्रण किया गया है। सैनिकों को कवच पहने हुए तथा नवीन अस्त्र शस्त्रों से युक्त एवं युद्धरत दिखलाया गया है। सैनिकों के साथ समान अस्त्र शस्त्र तथा ढाल तलवार आदि स्पष्टतः धातु निर्मित हैं। घुड़सवार तथा हाथियों पर आरूढ़ श्रीमंतों के चित्र इस वर्ग में मुख्यतः बने हुए मिलते हैं। हाथ एवं अंगुलियों की छाप, पेड़ पौधे, फूल पत्ती और पौराणिक देवी देवताओं का भी अंकन मिलता है। भीम बैठका के कतिपय शिलाशयों में कुषाण तथा गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में संक्षिप्त अभिलेख ऐतिहासिक कला में मिलते हैं।